नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के तहत उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सरकार गोरखा समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। और चमोली जिले में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां शुरू। संध्या समाचार के साथ मैं संजय भंडारी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं।
सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर, बिजली पानी, सड़क की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की।
वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। आज संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर सरकार ने आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज प्रदेश भर में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों और सरकारी संस्थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। प्रसार भारती के देहरादून स्थित परिसर में आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों व दायित्वों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में देश के अनेक महामनीषियों के परिश्रम और महान विचारों की व्यापकता से एक लोक कल्याणकारी संविधान की मजबूत संरचना संभव हुई थी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सहित 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष की मंजूरी दी है। समिति ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगे। नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपए, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपए और नगर पालिका में 10 वार्ड तक के अध्यक्ष 6 लाख रुपए, 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष 8 लाख रुपए तथा सदस्य 80,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार गोरखा समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और उनके विकास व कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। आज देहरादून में अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण संघ के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि गोरखाली समाज का भारतीय सेना में बड़ा अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखा समाज सीमाओं की रक्षा के साथ राज्य के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पूरे देश से जितने गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सैनिकों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में वो बेहतर होगा, उसको हम करेंगे।
इस सम्मेलन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय समेत देश के कई राज्यों से अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण संघ के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। यह संगठन 72 वर्षों से भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों गोरखा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। चमोली जिले में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में आज जिला मुख्यालय में बैठक आयोजित कर यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन पर चर्चा की गई। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यात्रा को ऐतिहासिक बनाना सभी की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में विधायकों और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर बेहतर प्रस्ताव बनाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में आयोजित कृषि औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले में महिलाओं द्वारा तैयार स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से महिलाएं कंडाली व मंडुआ के पापड़, मंडुआ के लड्डू, आम कटहल का अचार, गहत, तोर, सोयाबीन की दाल और कीवी फल बेच रही हैं। ग्रामोद्योग कृषि विभाग के अधिकारी सतीश भट्ट ने बताया कि सरकार के विक्रय केंद्र हिलांस आउटलेट के माध्यम से भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है। श्री भट्ट ने कहा है कि पहाड़ी उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ने से महिलाओं की आर्थिकी भी सुधर रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।
हमारे यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो भी स्थानीय उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अचार है, कनाली के पापड़ हैं, मंडवा पापड़ है, मंडवे के लड्डू हैं और स्थानीय जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फसल हो रही है एक कीवी, तो उसको हमने यहाँ पे महिलाओं द्वारा क्रय करके और यहाँ पर हमने स्टॉल के माध्यम से उसको विक्रय किया जा रहा है। धन्यवाद।
रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि खेल मैदान में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं के लिए जिला स्तर पर टीमों का चयन शुरू कर दिया गया है। प्रभारी जिला खेल अधिकारी मनोज सिंह चौहान ने बताया कि आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, वेटलिफ्टिंग, तैराकी और अन्य खेल स्पर्धाओं के ट्रायल शुरू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 28 नवंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के विभिन्न संकायों में 12 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां संविदा के आधार पर की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के तहत उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा सरकार गोरखा समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। और चमोली जिले में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां शुरू। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।